सलाम जी सारिआं नूं। और सुनाओ, सब ठीक हो? हालेलुया। इस तो पहले किसी खुदा दा कलाम सीखना शुरू करिए, आए हम सब खुदा के हजूर झुकें, उस खुदा का शुक्र करेंगे कि जो जोरावर है, जिसके बारे में हमने जाना कि चाहे हमारा गुजर रात की तारीकी में से हो, चाहे हमारा गुजर, हमारा चलना, हमारी ज़िंदगी के कैसे भी तूफ़ान हो, वो कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं जोरावर हूँ। और हमें इस बात का यकीन करने की ज़रूरत है। सो आए हम सब खुदा के हुज़ूर झुकें और उस खुदा को पुकारें जो हमारी सोच से, हमारे ख्यालात से, हमारी उम्मीदों से कहीं बढ़कर ज्यादा काम कर सकता है। हालेलुया। खुदावन कादर मुतलिक खुदा, तू जो जोरावर, तू जो रहीम, तू जो रहम करने वाला, तू जो मोहब्बत, तू जो साबर, तू जो सबर से हम सब के साथ पेश आता है ताकि हम उस दौड़ को ख़त्म करें, उस सफ़र को ख़त्म करें, उस दंगल को लड़ें जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। खुदा बाप, आज अपने कलाम की रोटी में से हम सबको बहुत कुछ खाने के लिए दे, ताकि हम सेर होकर इस ज़मीन पर तेरी शुक्रगुजारी और तेरी गवाही देने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ निकालें इफ़सियों पहला बाप, उसकी 19वीं आयत। हम सीख रहे हैं यहां पर ईमान के बारे में, और बाइबल मुकद्दस जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सुन रहे हैं, और मैं ये सुनाता रहूंगा जब तक मेरी सांसें चलती हैं, और आपकी भी यही ख्वाहिश और यही सोच होनी चाहिए कि जब तक आपकी सांसें चलती हैं, जब तक आप ज़मीन पर ज़िंदा हैं, जब तक आप इस ज़मीन के उन तमाम दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, नाकामियों को सामना करते हैं, हमारी सोच, हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो हमारे कामल करने वाले यीशु मसीह की तरफ लगी रहनी चाहिए। क्योंकि रोमियो 15वां बाप उसकी 4 आयत में हम सीख रहे हैं, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और यही बात हम पालूस के वसीला से आज सीखेंगे, इफ़सियों पहला बाप उसकी 19वीं आयत। और कहता है, मेरे साथ कहें, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मुआफिक। यहां पर हम रुकेंगे, यहां पर पालूस रसूल आगे चलकर बताएगा कि उस कुदरत ने, जिसे रूहुल कुद्दस की कुदरत कहते हैं, उस कुवत ने जो बयान से बाहर है, जो कुवत पहाड़ों को हला के रख देती है, जो कुवत एलिया की कुर्बानी पर आग नाजल करती है और बाल के पुजारियों का मुंह बंद कर देती है, ताकि वो उस जिंदा खुदा की कुदरत को देखकर कहें कि हमारे खुदा से तुम्हारा खुदा कहीं ज्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उस जैसा कोई भी नहीं। और वह पालूस रसूल आगे चलकर हम सीखेंगे कि उसी कुदरत ने किस तरह, जब यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मकदस को ढाओगे और मैं फिर तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, उसने अपने बदन के बारे में कहा था कि मैं दफनाया जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, उस मोजज़े के पीछे, उस काम के पीछे यीशु मसीह की वो रूहुल कुद्दस की कुदरत कार फरमा थी, कि उसने पत्थर को हटाया, उसने रोमियों के उन तमाम फौजियों को, पहरेदारों को उल्टे मुंह गिरा दिया, क्योंकि ये कुदरत बयान से बाहर है, ये कुदरत बहुत बड़ी है, जिसके बारे में अभी हम गा चुके हैं जबूर 46 में, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। यहां पर हम सीख रहे हैं, पालूस कहता है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। उसका कहने का मतलब है कि एक वक्त था जब तुम ईमानदार नहीं थे, एक वक्त था जब तुम ये कुदरत नहीं रखते थे, एक वक्त था जब तुम्हारे नाम के साथ खुदा का नाम नहीं जुड़ा हुआ था, एक वक्त था जब तुम खुदा के कहर के नीचे थे, एक वक्त था जब तुम उस अबदी मौत की हलाकत के क्या थे, फर्जंद थे। लेकिन अब कहता है हम ईमान लाने वालों के लिए ये कुदरत, जैसे मैंने आपको आपको कल बताया, बाइबल मुकद्दस की हर एक कहानी, हर एक बात, हर एक वाकया जो ईमानदारों की जिंदगी में गुजरा है, इसीलिए गुजरा है कि हम उससे सीखें। इसलिए ये कुदरत सिर्फ ईमानदारों के लिए दस्तियाब है, जिसे कहते हैं हासिल है, मुहैया है, मौजूद है, और हम ईमान लाने वालों के लिए। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज ईमान को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है, और यही खुदा की ख्वाहिश है। जैसे हमने कल सीखा था अब्रानियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत, और बगैर ईमान के, मेरे साथ कहें, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, और बगैर ईमान लाए यीशु मसीह के बगैर कोई भी खुदा के पास नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे साथ देखें अब्रानियों 11वां बाप उसकी 1 आयत से, खुदावंद का बंदा, लिखने वाला, अब्रानियों का नामालूम मुसन्नफ। बहुत से लोग कहते हैं कि पालूस ने लिखा है, बहुत से कहते हैं कि लूका तबीब ने लिखा है, लेकिन कोई भी पुख्ता तौर पर यह नहीं कह सकता कि इसका मुसन्नफ यानी कि लिखने वाला, तहरीर करने वाला, कलम बंद करने वाला कौन है। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर एक सहीफा जो लिखा गया है वो रूहुल कुद्दस के वसीला से लिखा गया है। सो अब्रानियों का मुसन्नफ, उसका लिखने वाला, खुदा का पाक रूह लिखाने वाले के वसीला से कहता है अब्रानियों 11वां बाप उसकी 1 आयत, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतकाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये ईमान की खासियत है कि ईमान उन चीजों का एतकाद करता है जिनको वो देख नहीं सकता, ईमान उन चीजों का यकीन करता है जिनको, जो जाहरी नहीं है। इसीलिए पालूस कहता है कि हम ईमान से चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। आप में से किसने खुदा को देखा है? किसी भी ने नहीं। हम में से किसी ने भी खुदा को नहीं देखा। अगर देखा होगा तो हम देख सकते हैं कि उसका जहूर देखा होगा किसी ना किसी सूरत में। लेकिन जैसे शिगिर्दों ने यीशु मसीह को रूबरू देखा, हम में से किसी ने भी यीशु मसीह को रूबरू नहीं देखा। तो ये क्या है? हमारा ईमान है। ये क्या है? हमारा ईमान है कि उस अनदेखे खुदावंद यीशु मसीह पर, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसका यकीन किया है। इसका मतलब है अनदेखी चीजों को, हमने अनदेखे वाकयात को क्या किया? ईमान से कबूल किया। और दूसरी आयत क्या कहती है? क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। यहां पर खुदा का बंदा कहता है उन तमाम बुजुर्गों के बारे में, उन तमाम रास्तबाज लोगों के बारे में, कि उनके बारे में जो गवाहियां लिखी गई हैं इसी तरह लिखी गई हैं कि उन्होंने अनदेखे खुदा पर, उसकी आवाज को सुना, उसके जलाल को देखा, वो जाहर हुआ और उनके हक में ये गवाही लिखी गई। और तीसरी आयत, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बना है, बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहरी चीजों से बना हुआ। आलम से मुराद यानी कि दुनिया, दुनिया की हर एक चीज, दरख्त, पहाड़, चरिंद, परिंद, जानवर, रींगने वाले, उड़ने वाले, समंदर, उसके तमाम पानी के जानवर। और ये हम किस तरह यकीन करते हैं? पैदाइश की किताब से कौन कौन वाकिफ है? पैदाइश की किताब का किसी को पता है? का चंद लोगों को पता है, लेकिन आपको बताने की जरूरत है। पैदाइश की किताब जिसे कहते हैं बाइबल की पहली किताब, पैदाइश की किताब किसे कहते हैं? बाइबल की पहली किताब। ये मूसा की पांच किताबें हैं जिस जो पहले लिखी गई, जो पहले हमें बाइबल में मिलती हैं। पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना। इसीलिए आप यहां पर हैं, इसीलिए मैं सात समुंदर पार से उड़कर आपके पास आया हूं ताकि हम जानें। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको नहीं आता तो सवाल पूछें, इसका क्या मतलब है, तब ही आप सीखेंगे। नहीं तो हम नींद में आते हैं, नींद में चले जाते हैं, इससे हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। बहुत कुछ है सीखने के लिए, और ये इसीलिए है आपके लिए, मेरे लिए। आलम, दुनिया किसके कहने से बनी है? खुदावन खुदा के। क्यों? क्योंकि यूहन्ना रसूल कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। पैदाइश की किताब ये बाइबल की पहली किताब है। जब अगर आपके पास बाइबल है तो आप जब बाइबल खोलेंगे तो ये पहले सफ़ों पर आपको मिलेगी। इसलिए खासकर आप बहनों के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। आपको घर में अगर कोई पढ़ सकता है तो उससे पूछें, अगर नहीं पढ़ सकता तो यहाँ पर पूछें, पादरी साहब इसका मतलब क्या है, ये पैदाइश की किताब कहाँ पर मिलती हैं। किस किस को पता है कि बाइबल की कुल किताबें कितनी हैं? कुछ लोगों को बाइबल की कुल किताबें 66 हैं। कितनी हैं? कितनी हैं? जिन्हों कहने हैं 60 ते 6 66। किनिया 60 ते 6? ये मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन जरूरत को देखकर, हमारी रूहानी जरूरत को देखकर खुदा का पाकरू इस मोड़ पर हमें लाया है कि हम ईमान लाने वालों के लिए। इसलिए जरूरत है कि हम जो ईमान लाए हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा ईमान क्या है। बेशक ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम के मुताबिक, दाऊद नबी कहता है, जबूर नबी कहता है कि तेरी बातें मेरे लिए शहद से मीठी, और बहुत दफा कहता है कि तेरा कलाम बहुत कड़वा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खाया वो मेरे लिए शहद, मीठा शहद बन गया। यर्मिया नबी ये कहता है। आपकी तरबियत के लिए, नसीहत के लिए किताबे मुकद्दस इसीलिए लिखी गई है कि हम तालीम हासिल करें। आपसे दरख्वास्त है, गौर से सुने और ज्यादा से ज्यादा पूछें। जितना ज्यादा पूछेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। सो बाइबल की कितनी किताबें हैं कुल? कितनी? पुराने अहदनामा में कितनी है, किसी को पता है? 39। कितनी है? 30 ते 9 39। किनिया 30 ते 9? 40 रुपए दे विचो 1 रुपया कढ़िए ते किन्ने रुपये रह जाते? 39। 39 किताबें हैं पुराने अहदनामा में, और नए अहदनामे में 27। कितनी? 27। 20 ते 7 27। 20 ते 7। अगर अज ते कोई पाड़ा भैन भरा बच्चा या कोई और पूछ ले तो हूँ तुम दस सकते हो ना कि बाइबल दियाँ कितनी किताबा? 60 ते 6। 60 ते 6। आवाज आनी चाहिए 60 ते 6। पुराने अहदनामे च कितनिया? 30 ते 9। 30 ते 9। ते नए अहदनामे च 20 ते 7। वी ते साथ
स्पाइन।
शुक्रिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहां पर बोलता रहूं बोलता रहूं और आप में से चंद एक हों जो सुने, इसलिए आपको बहुत गौर करने की जरूरत है, क्योंकि तब ही आपके लिए ये फलदार साबित होगी कलामे खुदा की तालीम। इसलिए ये कड़वी भी हैं, ये नसीहत परीजा भी हैं, इसमें आपकी हौसला फजाई भी है, इसमें आपकी तरबियत भी है, इसीलिए है ताकि हम सब क्या बने, खुदा के सच्चे और अच्छे फर्जंद और गवाह बने। तो लिखा है, हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहद है। हम ईमान लाने वालों के लिए जैसे कि जरूरत दिख रही है, हो सकता है हम इस पर इस आयत पर कई महीने सीखें, हो सकता है हम बाइबल की इस आयत पर हम आगे पीछे जाकर सीखें कि दरअसल हमारा ईमान क्या है, ताकि हम गैर कौमों को बताने वाले बने, ताकि हम अपने बच्चों को बताने वाले बने। अगर मेरा बेटी कैरी मुझसे पूछती है कि पापा जी ताया जी इसका मतलब क्या हो, तो मैं उसे बताने वाला बनूं। ये बड़ी बात गौर से सुन लें, ये पादरी ही की खिदमत नहीं कि सिर्फ वो ही कलाम को जानता हो। अगर ऐसा है तो फिर हम गलती पर हैं। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है और उन गवाहों से, उन गवाहियों से, उन जिंदगियों से जो पादरी नहीं थे, जो काहिन नहीं थे, जिनका बहुत बड़ा ओहदा नहीं था, वो आप जैसे आम लोग थे, जो जमीन का काम करते थे, जो कारोबार करते थे, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, किस लिए? मसीह के लिए आवाज बुलंद की। आज अगर पाकिस्तान में बहुत से कैद में हैं, तो ज्यादा पादरी साहब नहीं हैं, वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का इकरार किया। मैं हरगिज नहीं कहता कि पादरी साहब ही कलाम सुनाएं, मैं ये कह रहा हूं कि हम सबको कलाम से वाकिफियत होने की जरूरत है। ये मेरी ही जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी भी है। क्या इस पर हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया। आए हम सब खुदा के हजूर चुके हैं। मेरी मिन्नत, मेरी दरख्वास्त, मेरी आपसे इल्तमास यही है कि ज्यादा से ज्यादा पूछें, ज्यादा से ज्यादा पूछें। अगर यहां नहीं पूछ सकते तो फोन नंबर है, घर पर बुलाकर सारे खानदान में गुफ्तगू कर सकते हैं कि पादरी साहब इसका मतलब क्या है, हम सीखना चाहते हैं, हमने पहले झिझकचाहट में सारा वक्त गुजार दिया, हमने पहले कभी भी पादरी साहब से नहीं पूछा, किसी से भी बात नहीं की, लेकिन अब कलाम खुदा हमें कह रहा है, हमारी तरबियत कर रहा है, पूछ सकते हैं। मैं आपके आपको खा नहीं जाऊंगा, बल्कि बड़ी फरोतनी के साथ आपके साथ बैठकर उसके कलाम की खिदमत को पेश करूंगा, क्योंकि हर एक सहीफा हमारी तलीम के लिए है। आसमानी बाप, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा पाक रू, तू जो हमारे दिलों और गुर्दों से वाकिफ है, तू जो हमारी नासमझी में हमें समझ देता है, तू जो हमारी कमजोरी में हमें जोर देता है, तू जो खुदावन खुदा हमारी मासूमियत में हमें खुदावन खुदा प्यार करता है, तू जो हमारी तमाम तरह की हालतों में हमें कबूल करता है और हमसे वफादार रहता है। आज के कलाम की कड़वी और मीठी बातों के वसीला से हम सबको बरकत और कबूल करने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।